जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
सब लोग पुकारो, हृदय से पुकारो।
जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम। प्यारी राधे, प्यारो श्याम, प्यारो श्री बरसानो धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे।
चालू हो गया, एक बार घुमा लो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा जय प्रभु पादा। निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।
सब लोग पुकारो गोपाल,
गोपाल,
हे गोपाल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
थोड़ी देर और कीर्तन करते हैं जब तक ये आरती का आवाज बंद नहीं होता है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।
बोला बोला
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे,
श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हम श्री बरसाना धाम के हार्ट में आ गए हैं। जैसे हमने पहले आपको बताया था कि ब्रह्मा जी ने सत्ययुग के पहले शुरुआत में 60,000 साल तप किया, फिर सत्ययुग में अंत में फिर 60,000 साल तप किया, फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको वरदान मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा कि आपके चरणों की, आपके भक्तों की, गोपियों के चरणों की मुझे रज चाहिए, तो फिर भगवान ने उनको बरसाने भेजा और ब्रह्मा जी पर्वत बने। उनके चार मुख हैं इसलिए बरसाने में चार पर्वत की चोटियां हैं। पर्वत तो नहीं कह सकते, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सुंदर हैं, और चार हैं क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। पहला मुख भानुगढ़ है, दूसरा मुख आपने देखा दानगढ़ है, तीसरा मुख विलासगढ़ है जहाँ पर अभी आप लोगों को चढ़ने की सुविधा नहीं है, और चौथा मुख है यहाँ पर लाइट दिख रही है ऊपर जहाँ से आप लोग ऊपर उतर के आए, वह है मानगढ़। और ये जो कुंड है ये ब्रह्मा जी की नाभि है, अम्बिलिकस। उस दृष्टि से और लीला के दृष्टि से भी ये बहुत ही उत्कट स्थान है, बहुत ही तीव्र और उत्कट आनंदमय स्थान है। गंधर्व और देव भी लोग यहाँ पर आकर आनंद को प्राप्त करते हैं, ऐसा श्लोक वहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको गहवर कुंड कहते हैं, राधा सरोवर कहते हैं, और ये मान मंदिर के नीचे यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1986 में आए थे। तब यहाँ पर ये बिल्डिंग नहीं थी, एक झोपड़ी थी खाली वहाँ पर, और वहाँ पर रमेश बाबा जी महाराज रहते थे और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज 1971 में यहाँ पर और ऊपर 6 महीना रुके थे, जब वो अपने गुरु से भी नहीं मिले थे, वृंदावन में ढूंढ रहे थे भगवान को, हिमालय में ढूंढ रहे थे। हिमालय से उतरकर जब ब्रज में आए, कुछ समय वृंदावन में रहे और वहाँ पर घनश्याम दास बाबा जी महाराज के संग में कुछ दिन रहे और उन्होंने उनको कहा कि आप बरसाने जाइए, तो फिर वहाँ से वृंदावन से वो बरसाने आए। और जिस रास्ते से आप सब लोग चलकर आए उसी रास्ते से हमारे महाराज जी भी पहाड़ पर आए और 6 महीने बिताए उस पहाड़ पर। तभी जल नहीं था, डाकुओं का अड्डा था, तो फिर भी वहाँ रहते थे रमेश बाबा जी महाराज, सखी शरण बाबा जी महाराज और राधानाथ महाराज, और बाकी लोग गृहस्थ लोग आते जाते थे उधर। आपको किताब जरूर पढ़ना, उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं रमेश बाबा जी महाराज और राधानाथ महाराज के बीच में, और कैसे कैसे उनका यहाँ पर संग रहा, कैसे दिन बिताए उन्होंने, कैसे कैसे दिव्य अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, क्या क्या प्रसंग हुए, सबका वर्णन जर्नी होम इस किताब में दिया है, त्रिशार्थ पथिक मराठी में, अनोखा सफ़र हिंदी में, ऐसे हर भाषा में वो किताब का अनुवाद हुआ है। और अपने जीवन की आध्यात्मिक पूंजी में से बहुत ज़्यादा अधिक आध्यात्मिक पूंजी उन्होंने यहीं पर प्राप्त की है। तो ये बहुत बड़ा पावरफुल स्थान है, यहाँ की लीला समझना मुश्किल है, इतनी सरल नहीं है जितनी बाकी की लीलाएं हैं। जैसे राक्षस आया, भगवान ने युद्ध किया, उसको घुमाया, पैर पकड़ के पटक दिया, मर गया, सब लोगों ने हरि बोल बोला, नदी में स्नान किया, प्रसाद खाया, चले गए। इतनी सरल लीला नहीं है ये, जैसे कहते हैं ना वो अंतरंग का भी अंतरंग स्थान है ये, एकदम प्राइवेट। सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं, इसके ऊपर आप देखते हैं ना, ऊपर एकदम ऊपर वो मोर कुटी है, उसकी कथा बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर राधा रानी हर रोज अपने गिने चुने सिलेक्टेड स्पेशल 64 सखियों के साथ स्नान करती है रोज गैबर कुंड में। और गैबर कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है। देखिए आप इसके चारों ओर कितने सुंदर वृक्ष हैं, पीपल के वृक्ष हैं, बरगद का पेड़ है, नीम के हैं, कदंब के हैं, हर प्रकार के वृक्ष यहाँ पर शोभा दे रहे हैं। और ये गैबर कुंड एक वन में है जिसका नाम है गैबर वन, और वो गैबर वन जो है वो राधा रानी के मंदिर से शुरू होता है और इस गांव को पार करके अंत तक जाता है। और उसकी विशेषता ये है कि ये गैबर कुंड गैबर वन जो है वो राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया है। इसका निर्माण, इसके वृक्षों को बोना और सींचना और परवरिश करना, ये सब काम राधा रानी ने स्वयं किया है। सो यहाँ का जो वातावरण आपको दिखाई पड़ रहा है, प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल अंतर्गत वातावरण जो है, वो राधा रानी ने कृष्ण के आनंद के लिए स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और यहाँ के जितना यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसको भौगोलिक स्थिति है, वो सब कमान में है। कमान, उसको इंग्लिश में आर्च कहते हैं। इसमें अभी आप ऊपर से उतर के आए ना, तब देखा आपने ऊपर ऐसे बनाया हुआ है, आप शायद जल्दी जल्दी में आए होंगे। जब मान मंदिर से उतरते हो तो वहाँ पर जो ग्रिल का बना है ना, वैसे वो गोल ऐसे बनाया है और उसके ऊपर ऐसी वेलियाँ बहती रहती हैं, वैसे ही पूरा वातावरण यहाँ पर राधा रानी ने गैबर कुंज में बनाया है। और ये उनकी अति अंतर्गत विशेष प्राइवेट लीला स्थली है, जहाँ पर सखियाँ जो हैं ऐसे ही गोल 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 चीज़ों में से अंदर चले जाते हैं, गोल गोल रास्ता में। राधा रानी श्रृंगार करके आती है, कृष्ण भगवान आते हैं और राधा रानी का हाथ पकड़कर, एक हाथ पकड़ते हैं और इस कुंज में अंदर गलियों में ले जाते हैं उनको, और बाएं हाथ से जितनी भी वेलियाँ क्रीपर्स है ना, ऐसे ऐसे बहती है ना, उसको संवारते हैं, इसे उठाते हैं और रास्ता बना बना के राधा रानी को अंदर लेके जाते हैं। प्यारी जू आगे चल, आगे चल गहवर बन भीतर, जहां बोले कोयल री रा। प्यारी जू आगे चल, आगे चल गहबर बन भीतर, जहाँ बोले कोयल रे राधे जो। स्वामी हरिदास जी लिखते हैं, स्वामी हरिदास जी भी ब्रज के बहुत बड़े संत हो गए हैं, संगीत में सबसे सबसे प्रवीण थे वो। आज भी स्वामी हरिदास संगीत महोत्सव मनाया जाता है उनकी याद में। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन के बांके बिहारी जी को प्रकट किया था निधि वन में, पैर नीचे रखना। तो वो स्वामी हरिदास जी ने यहाँ की लीला गाई है, यहाँ पर कैसे प्यारी जू यानी राधा रानी, प्यारी जू यानी राधा रानी, उनका हाथ श्रृंगार करके सज सज के आई हुई है, उनका हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से बेलियों को संवारते हुए रास्ता बनाते हुए राधा रानी को अंदर ले जाते हैं। फिर अंदर 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 जाने के पश्चात में सखियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है, पुष्प की शैया बनाई है, पुष्प का सेज बनाया है, सब श्रृंगार बनाया है, भोजन की व्यवस्था है, वाद्य है, सब कुछ सुंदर व्यवस्था है, लेकिन सब कुछ प्राइवेट है, कोई वहाँ बाहर का व्यक्ति नहीं, केवल निकट के सखियाँ। और फिर शाम से लेकर रात भर सवेरे तक लीला यहाँ पर चलती रहती है, प्रेम की लीला। ऐसा ये सुंदर वन है। तो ये गहवर वन जो है वो राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। बचपन में जब राधा रानी और कृष्ण भगवान छोटे छोटे थे तो राधा रानी और कृष्ण भगवान बेलियों का विवाह वृक्षों से करते थे। दे यूज टू गेट द क्रीपर्स मैरिड विद द ट्रीज, बचपन की लीला है। और राधा रानी को जो वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से, उसकी भी थोड़ी सी कहानी बताऊंगा आपको मैं। राधा रानी यही गैवर कुंज में खेल खेल रही थी, और सब हम लोग खेलते हैं बचपन में, उसको क्या कहते हैं, उसको घर घर का खेल खेलते हैं। मतलब कोई माता बनता है, कोई पिता बनता है, कोई बच्चे बनते हैं, कोई रसोई बनाता है, कोई सब्जी काटता है, कोई बच्चों को स्कूल भेजता है, कोई डब्बा बना के देता है। ऐसे हम लोग बहुत बचपन में खेले हैं। तो राधा रानी रसोई बना रही थी, सखियाँ उनकी सहायता कर रही थी, और सारे व्यंजन जो थे, हम लोग भी कॉलीफ्लावर लेके आते हैं, हम लोग गाजर लेके आते हैं, हमको गोभी लेके आते हैं, तो सब ब्रज रज को लेकर ही व्यंजन बना रहे थे लोग। ब्रज रज की ही रोटी बन रही थी, ब्रज रज की दाल बन रही थी, पकौड़ी बन रही थी, कड़ी बन रही थी, ब्रज रज की ही खीर भी बन रही थी, और सब सखियाँ एकदम भाव में आकर उसको सहायता कर रही थी। लेकिन सब कुछ जो था वो ब्रज रज ही था, मतलब मिट्टी थी एक प्रकार से। तो दुर्वासा मुनि आते हैं, तो दुर्वासा मुनि जब आते तो सखियाँ बहुत भाव में उनकी बोलते हैं, बाबा आओ आओ, बहुत बढ़िया गरम गरम भोजन बन रहा है। तो बाबा जो है वो देखते हैं सब मट्टी तो मट्टी है, तो दुर्वासा मुनि तो क्रोध के लिए मशहूर है, तो तुरंत क्रोध आता है, कहते भस्म कर दूंगा। तो सखियाँ डर के मारे भाग जाती है और राधा रानी के पास में आती, तो वो चल चल के सखी के पीछे आता है, पता नहीं क्या हो रहा है इनका। तो अंदर आते हैं तो राधा रानी वो चूल्हा जो है उनका जो खिलौने वाला, उसमें खिलौने में उनकी खीर बन रही है। तो राधा रानी अपनी सुमधुर सुमधुर वाणी, इतनी सुंदर वाणी से उनको बोलती है, बाबा इतना गुस्सा काहे को कर रहे है, थोड़ी खीर खा लो तो क्या बिगड़ेगा। तो जो सखियों के वचन से क्रोधित हो गए, राधा रानी से वचन से मोहित हो गए, और राधा रानी ने उनको पात्र में वो मट्टी वाली खीर दे दी, बोले बाबा खीर खाओ। और वो भी एकदम बड़े चाव से खाने लगे। जैसे खाने लगे तो उनको दिव्य चावल की खीर खाने का अनुभव हुआ, उसको पायस कहते हैं, पायसम। वो स्वर्गीय आनंद आया उनको, ऐसे चावल कभी खाए नहीं, ऐसा दूध, ऐसा स्वाद कभी लिया नहीं। मट्टी खा रहे हैं लेकिन इनको जवान में और पेट में दिव्य खीर का आनंद आया, और आंखों से आंसू आए प्रेम के, शरीर में रोंगटे खड़े हो गए उनके आनंद से। लेकिन मट्टी खाए जा रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, जिसको क्रोध आकर भस्म कर दूंगा बोल रहे हैं, वो रो रहे हैं, खाते जा रहे हैं। सब क्या भी देख रही है, अभी तो बोल रहा था जला दूंगा, अभी तो खीर खा रहा है। प्रसन्न होकर फिर दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया कि इस कन्या के हाथ से जो भी बनेगा उसको अमृत का स्वाद होगा, जो भी उसको खाएगा वो रोग मुक्त हो जाएगा और विजयी होगा। तो कुछ लोग कहते कि वो लीला यहाँ हुई थी, कोई बात नहीं, ब्रज में हुई थी निश्चित रूप से। तो यहाँ पर एक और सुंदर लीला हुई थी, वो आप जानते हैं कि सब ग्वाल बाल मिलकर माखन चोरी करते थे और बहुत तंग किया करते थे गोपियों को, उनके मटके तोड़ते थे, ऊंचे ऊंचे लटकाते थे, तो फिर वो चढ़ चढ़ के उखल पे चढ़ के, किसी के कंधे पे चढ़ के, पीठ पे चढ़ के वो तोड़ते थे, वो अंधेरे में रखते थे, तो पता नहीं भगवान के शरीर से ऐसा प्रकाश निकलता था। बहुत कंप्लेन करते थे गोपियाँ कि तुम्हारा लाला जो है हमारे घर पे आता है, हम लोग छुपा छुपा के रखते फिर भी वो आता है, पता नहीं इसके गहनों में प्रकाश है कि कहाँ से प्रकाश आता है। तो मैया गहने उतार देती है, तो कहते गहने उतारने के बाद भी प्रकाश आता है, तो कितने भी अंधेरे में छुपाया, कितने भी ऊंचा छुपाया, फिर भी माखन चोरा के खाता है। और जब कभी नहीं मिलता है तो फिर ये हमारे बच्चे जो पल्ले में सोए हैं उनके कान में पानी डालता है, उनको चिमटा निकालता है, हाँ, और उसके बाद भी नहीं मिला तो पेशाब करके चला जाता है। ऐसे अद्भुत कल रोज रोज आके कंप्लेंट करते थे नंद भवन में, गोकुल में भी और यहाँ पर भी। तो मैया तो कहती थी, अरे तुम लोग तो मेरे बेटे के खिलाफ हमेशा शिकायत करते रहते हो, लेकिन कभी रंगे हाथ तो पकड़ के लाओ ना, मैं कैसे विश्वास करूंगी, क्योंकि मैं तो इतना घर में इतना सुंदर श्रेष्ठतम मक्खन बना के उसको खिलाती हूँ। नवनीत तो कमल के खुशबू वाला होता है, कमल के खुशबू वाला मक्खन मैं खिलाती हूँ उसको, और वो भी वो मना करने तक गले तक आया तब तक खिलाती हूँ, और भरपेट खिला के फिर भेजती हूँ खेलने के लिए। तो मुझे कैसा यकीन होगा कि इतना भरपेट खाया हुआ आदमी तुम्हारे घर पे आके चोरी करके खाएगा, बिना मांगे चोरी करके खाएगा, तो मुझे विश्वास नहीं होता इस बात का। इसलिए आप मुझे अगर यकीन दिलाना है तो आप मुझे रंगे हाथ पकड़ के लाओ। तो गोपियों ने कई बार कोशिश की उनको पकड़ने की, लेकिन हर बार भगवान ने कुछ ना कुछ चकमा दिया उनको। एक बार पकड़ के उनको ले जा रहे, अभी लंबी लंबी कहानी है, थोड़ी सी बताता हूँ। एक बार जब पकड़ के लेके जा रहे थे तो जैसे ही घर पहुँचे तो भगवान ने रूप बदल लिया अपना, और जो गोपी पकड़ के ले जा रही थी उसका ही बच्चा बने वो। और उसने बड़े चाव से बोला, अशोदा तुमने कहा था ना मैं मेरे संगे हाथ पकड़ के लाई हूँ गुनेगार को। तो घूंघट उठाती है बच्चे का तो उसका ही बालक दिखाई पड़ता है, और कृष्ण भगवान मैया के पास खड़े हैं। बोलते मैया क्या हो रहा है, शोर क्यों मच रहा है? बोले गोपी कंप्लेंट कर रही है कि तुमने माखन चोरी किया, और दिखाती है तो उसका ही बच्चा है। यशोदा बोलते हैं, अरे तुमको शर्म भी कुछ नहीं है, मेरा बच्चा मेरे पास है, और तुम किसी को लेके आती हो बोलती, तुम्हारे बच्चे को लेके आती हो बोलती, तुम मेरा बच्चा है। अभी कभी अपने पति को लेके आओगे बोलेगी ये देखो ये तुम्हारा कृष्ण है, हाँ कभी खसम को ले आओगी तो कैसे होगा। ऐसे कई बार कृष्ण भगवान को चकमा देते हैं, तो गोपियाँ हर रोज कोशिश करते हैं उनको पकड़ा जाए, अलग अलग युक्तियाँ बनाती हैं। एक दिन ऐसा युक्ति बनाया उन्होंने कि एक बड़े से घर में सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दिए, और एक दरवाज़ा खुला रखा, उसमें बड़े नीचे तक मटकी मक्खन की नीचे तक झुका के रखे, मतलब पहले ऊपर रखते ना उसको लो लेवल पे कर दिया, जैसे कि अब आप खड़े खड़े भी खा सकते हो, और हर एक मटके में एक घंटी बांध दिया, और घंटी जो है ना वो भी भगवान की भक्त है, तो घंटी जो होती है ना उसको उसको उन्होंने बताया कि देखो भगवान जब भोजन करते हैं तो तुम बजती हो, तुम्हारा तो रिवाज है, क्योंकि घंटी बजती है तो भगवान भोजन करते हैं, या तो भगवान भोजन करते हैं तो तुम बजती हो, या तुम बजती हो तो भगवान खाते हैं, दोनों में से एक ही बात। तो अभी हम आपको सबको एक एक बांध रहे हैं हर एक मटके पर, और जब भी वो आएंगे तो ज़रूर बजना, हम लोग सब झाड़ियों में छुपे हुए हैं, जब घंटी बजेगी तो हम झपक पड़ेंगे सबके ऊपर और सबको पकड़ेंगे। वैसा कन्फ्यूज नहीं कौन किसको पकड़ेगा, पहले हमारा जोड़ी बन के रखा है कि ये गोपी इसको पकड़ेगी, वो गोपी उसको पकड़ेगी, ये कन्हैया को पकड़ेगी, ये बलराम को पकड़ेगी, ऐसा पूरा हमारा सेटिंग हो गया है। आप खाली बजना बस, जैसे आप बजेगी हम लाएंगे झपक के पड़ेंगी, सारे दरवाजे बंद है, एक ही दरवाजा खुला है, वहीं से हम लोग हमला करेंगे तो वो भाग ही नहीं पाएंगे। तो हो गया, फिर वो सब लोग छुप गए, एकदम शांति हो गई, और कुछ देर बाद निश्चित रूप से कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेकर आए, सुबल उज्ज्वल मधुमंगल श्रीदामा सबको लेकर बहुत सारे लोग आए। तो आए तो देखा, अरे आज के दिन तो एकदम बड़ा अच्छा नजारा है, इतना आसानी से मक्खन रखा हुआ है रेडीमेड, कोई चढ़ने की जरूरत नहीं, कोई मुखल की जरूरत नहीं, कोई कूदने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या नज़ारा है, इसमें घंटी भी बंधी हुई है, मतलब वो षड्यंत्र है इसके अंदर, तो समझते हो वो षड्यंत्र है। तो वो घंटी से बात करते हैं, बोले घंटी देखो आज के दिन नहीं बजना, हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अब रोज बजती हो जानता हूँ, हमने ही रिवाज बनाया आपका, मर्यादा हमारी है, हमने बताई है, लेकिन आप अभी बज नहीं बजना, हाँ और हम खाएंगे फिर जब जाएंगे तब बजना। तो जैसे ही वो गोपी घंटी से बात करके हाथ डालते हैं और खाने लगते हैं तो घंटी जोरदार बजने लगती है, सब घंटियां बजने लगती है, जैसे ही बजने लगती है तो हाथ में माखन, मुंह में माखन, ओठों पर माखन, रेड हैंड पकड़ा हुआ है, तो सब गोपियां झपकती है और सबको पकड़ लेती है, लेकिन ये उतनी होशियार रहते हैं कैसे भी करके छुड़ा लेते हैं अपने आप को, और झट झट से एक 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 सबके ऊपर कंधे पे चढ़ के एक खिड़की ऊपर के खोल लेते हैं, और खिड़की से सब लोग कूद जाते हैं, सब लोग कूद जाते हैं एक एक करके, सब लोग भाग जाते हैं, गोपियां कोशिश कर रही है जिसको पकड़ने का, उसको पकड़ने का, लेकिन वो सब लोग हाथ से छूट रहे हैं और भाग रहे हैं और चलो चलो भागो 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 बोल रहे हैं, सब भगदड़ मच जाती है और सब गोपियां ऐसे परास्त सी हो जाती है। और वो क्या करते हैं, वो ऊपर भाग रहे हैं, उनको वो नीचे से पैर से खींचना चाहती है, वो हाथ से उनको ग्वाल बाल जो ऊपर पहुंच चुके हैं वो ऊपर से खींच रहे हैं उनको, और नीचे से पैर पकड़ के गोपियां खींच रही हैं उनको, लेकिन फिर भी वो निकल जाते हैं, ऊपर वाले उठा उठा के उनको ले जाते हैं। एक बेचारा जो भक्त है राधा कृष्ण भगवान का, मित्र है वो, उसका नाम है मधुमंगल। वो मधुमंगल जो है ना वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण रुको ना जरा बीच में, इतना बड़ा पेट है उसका, ब्राह्मण बालक है तो वो खिड़की छोटी उसका पेट बड़ा, तो उसको ऊपर से वाल वाल खींच रहे हैं और उसका पेट फंस जाता है खिड़की में और वो नीचे खींच रहे हैं। अभी बाकी सब तो पतले पतले निकल गए, लेकिन जो बड़ा वाला है वो अटक जाता है उधर। तो फिर उसके बाद में बहुत खींचने के बाद में भी नहीं निकलता खिड़की से, तो उसको पैर से खींचने वाले लोग जो है विजयी हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अभी सारे ग्वाल बाल भाग जाते हैं और अकेला मिल जाता है, अकेला इतनी सारी गोपियां और एक चोर मिला हुआ है, बाकी सब भाग गए। तो उसको सब लोग पीटते हैं उसको, कोई लाठी से मारते हैं, कोई मुक्के से मारते हैं, कोई हाथ से मारते हैं, कोई चेंड उसकी चोटी खींचता है, वो जोर से चिल्लाने लगता है, हे कृष्णा हे बलराम बचाओ बचाओ, ये सब गोपियां मुझे आतंक कर रही है, परेशान कर रही है। वो चिल्लाता है मैं ब्राह्मण हूँ मुझे मत मारो, फिर भी मारते रहते हैं उसको। तो कृष्ण बलराम भी भाग रहे हैं ना आगे, उनको पुकार सुनाई पड़ती है, मेरा मधुमंगल पुकार रहे हैं। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं, अरे मधुमंगल को अकेले छोड़कर भागना अच्छा नहीं है, कुछ करना चाहिए। तो दोनों लौट के आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, अरे गोपियों पागल हो गए हो क्या, ये सांदीपनी मुनि का पुत्र है, ये ब्राह्मण है, इसका अपराध करोगे तो ये शाप देगा आपको, शाप की वजह से आप कि शादी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसकी 7 शादियां पहले हो चुकी है, जो बुढ़ा व्यक्ति होगा और उसकी 7 शादियां हो चुकी है उसके साथ आपकी शादी हो जाएगी, इतना पावरफुल ब्राह्मण है ये, इसके साथ अपराध मत करो। तो गोपियां बेचारी भोली भाली है, इनकी बातों में आ जाती है तुरंत, अरे डर जाती है, घबर जाती है, कांपने लगती है, अरे गड़बड़ की हमने, तो एकदम ऐसे घुटने पर आ जाती है, बोलती है तो क्या करना है बताओ, हमने तो अपराध कर दिया है, क्या करना है। तब तक हमारे मधुमंगल जी उठ जाते हैं, बड़ा बड़ा ठीक कर देते हैं, बोलते गोपियों तुमने हमारा अपराध किया है, अगर तुम हमारा शाप से बचना चाहती हो तो बोले क्या करें बताइए क्या करें, बोले लड्डू बनवाओ, हर एक प्रकार के लड्डू बनाओ, कोई लड्डू दोबारा नहीं होना चाहिए, सेम लड्डू अनंत प्रकार के लड्डू बनाओ और बढ़िया प्रेम से बनाओ, बड़े बड़े संख्या में बनाओ और हमें भोग लगाओ, फिर हम आपको शाप नहीं देंगे, हमको आशीर्वाद देंगे। तो गोपियों ने उनको यहाँ बिठाया, जहाँ पर बैठे ना वो सिंहासन है वहाँ पर, वहाँ बिठाया, अपने घर जाकर तरह तरह के लड्डू बना के लेके आए, वो लड्डू बनाकर सबका भोग लगाया, उनको उनकी आरती किया, उनका पूजा किया, उनको सत्कार किया, दक्षिणा दिया, और मधुमंगल ने बड़े थाट से बैठकर सब लड्डू वड्डू खाए फर्स्ट क्लास, और बोले आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका विवाह आपके मन में जो है उसके साथ ही होगा, और उनके साथ नहीं होगा जो बुढ़ा है और 7 शादी कर चुका है। तो ये लीला भी यहाँ पर हुई थी। तभी मैं आपको वो बताना चाहता था, ऊपर मोर कुटी है उसका क्या लीला है, ये जो मान मंदिर है ना, इनके भगवान का नाम है राधा मान बिहारी लाल। तो मान बिहारी जी मतलब कृष्ण, राधा रानी मानिनी, राधा रानी भगवान के ऊपर अलग अलग कारणों की वजह से मान करती है, उसको क्रोध नहीं कहते हैं, क्रोध हम लोग करते हैं, वो क्रोध जो होता है ना वो स्वार्थ पे आधारित होता है, मुझे नहीं मिला इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूँ, मुझे आपने सम्मान नहीं दिया, मुझे आपने प्रसाद में जिलेबी नहीं दिया, सबको दिया, ऐसा खुद के लिए जब नुकसान होता है ना कोई, खुद की इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमको आता है क्रोध। लेकिन राधा रानी जब करती है तो उसको मान कहते हैं, क्योंकि मान जो होता है वो स्वार्थ के लिए नहीं होता है, मान जो है कृष्ण का प्रीति बढ़े, उसकी प्रीति में वृद्धि हो, इसलिए वो मान करती है, रूट जाती है, उनके रूटने से उनका प्रेम और बढ़ जाता है, उसको मान लीला कहते हैं। वो सूरदास जी ने गाई है, सूरदास जी ने उसको लिखा है, वर्णन किया है। अनेक कारण है मान करने के। एक कारण है कि भगवान रासलीला में समय पर नहीं आते हैं, कभी राधा रानी आती है लेट, कभी कृष्ण लेट आते हैं, होते रहता है लीला में। तो राधा रानी अगर समय पर आ गई, कृष्ण लेट आ गए, तो राधा रानी टूट जाती है। फिर कृष्ण भगवान राधा रानी से डांस सीखे हुए हैं। राधा रानी कृष्ण की मुरली की भी गुरु हैं और नृत्य की भी गुरु हैं, और अनेक अनेक कलाएं राधा रानी ने ही कृष्ण को सिखाई है, तो वही सब गुरु हैं उनकी। हम समझते हैं कृष्ण मुरली धर रहे हैं, बहुत दुनिया में मशहूर हैं मुरली बजाने में, लेकिन मुरली बजाने को सिखाया राधा रानी ने। और नृत्य भगवान नटराज हैं, उनका नाम नटराज है, तो नृत्य करना भी भगवान को राधा रानी ने सिखाया। तो ये क्या करते हैं, उनके डांस क्लास में जाते हैं ना, तो बहुत होशियार है, तो हर चीज़ झट से सीख लेते हैं। 12 साल की जो शिक्षा थी सांदीपनि मुनि के आश्रम में, एक साल में सीख के आए सब, बाद की बात है वो, लेकिन इतने तेज है भगवान। लेकिन जब राधा रानी उनको डांस सिखाती है तो जानबूझ के गलत कदम डालते हैं। कारण क्या उसका, क्योंकि अगर तुरंत सीख लिया तो क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी ख़त्म होगा तो कम संग मिलेगा, ज़्यादा संग चाहिए तो गलत गलत करते रहेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, ज़्यादा संग मिलेगा उनका। और राधा रानी बहुत भोली है, बोलते अरे कन्हैया ऐसे नहीं, ऐसे कदम डालते हैं, तो फिर गलत कदम डालेगा, मतलब फिर भी बोलेगे प्रेम से, अरे कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नाचना होता है, फिर गलत कर। लेकिन कुछ देर बाद उसको समझ में आता है कि ये चालाकी कर रहा है, तो रुट जाती है, फिर वो चले जाते हैं रामान करके। ऐसे एक बार जब रास में लेट आए तो वो रुट गई, और जमुना पार करके एक जगह जाके मान में रोई, तो मान सरोवर बना, वो आज भी जमुना पार वृंदावन में उपस्थित है। यहाँ पर एक दिन राधा रानी और कृष्ण भगवान ने एक दूसरे का श्रृंगार किया। आम तौर पर तो गोपियाँ अलग अलग आकर श्रृंगार करती हैं उनका, ललिता विशाखा के निर्देश के अनुसार, वृंदा देवी के योजना के अनुसार कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार करते हैं, लेकिन कभी कभी वो खुद का श्रृंगार करते हैं। जैसे भांडीरवन में जब मिले थे तो उन्होंने अपने आप ही श्रृंगार किया था। जब श्रृंगार वट में मिले थे तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी का श्रृंगार किया था। कुसुम सरोवर मिले थे, राधा रानी ने राधा रानी के बालों का श्रृंगार कृष्ण भगवान ने किया था। ऐसे अंतरंग लीला है उनकी। तो उन्होंने एक बार यहाँ पर एक दूसरे का श्रृंगार किया, तो राधा रानी ने श्रृंगार किया, कृष्ण का श्रृंगार किया, कृष्ण ने राधा रानी का किया। श्रृंगार पूरा हुआ तो राधा रानी ने कहा, अभी आप बताओ, हमारे श्रृंगार का वर्णन करो, हमारे सौंदर्य का वर्णन करो। तो कृष्ण को एकदम शब्द ही नहीं मिलते हैं, इतनी सुंदर राधा रानी है, इतना सुंदर मुख कमल उनका, क्या तुलना करें, किसकी तुलना करें, कोई भी तुलना करेगा तो वो कम पड़ जाएगा राधा रानी के सौंदर्य के सामने। ऐसे कहते हैं, आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अंदाज देता हूँ, ये विश्व की, ये पृथ्वी की समझो कोई सबसे सौंदर्यवती स्त्री है, ऐसा कोई पृथ्वी पर स्त्री नहीं है। वो कहते हैं कि वो स्वर्ग की सुंदरी के सामने, जो सबसे कमजोर सुंदरी है स्वर्ग की, उसके सामने घोड़ी जैसी दिखती है। और स्वर्ग की जो सुंदरी होती है सबसे सबसे बेस्ट सुंदरी, वो वैकुंठ के स्त्रियों के सामने घोड़ी जैसी दिखती है। और जो वैकुंठ की सबसे सुंदर स्त्री है वो गोपियों के सामने घोड़ी दिखती है। और ऐसे अनंत गोपियों में सबसे सौंदर्यवती राधा रानी, उनका वर्णन शास्त्र में दिया है, कैसे वस्त्र परिधान करती है, कैसे फूल पहनती है, 5 प्रकार के, उनका जो ऊपर का होता है ब्लाउज वो पिंक कलर का होता है, उनकी साड़ी नीले रंग की होती है। कारण क्या उसका, क्योंकि हमेशा वो कृष्ण की याद करना चाहती है, और कृष्ण नीले रंग के है, इसलिए कृष्ण जो है उनका रंग की साड़ी पहनती है। सुनील वसन गोरी रूपे गुणे धन्या, सुनील बहुत सुंदर नीला वस्त्र वो पहनती है। और कृष्ण भगवान क्या पहनते हैं, पीताम्बर पहनते हैं। क्यों पीताम्बर पहनते हैं, क्योंकि राधा रानी का वर्ण पीताम्बर जैसा है, गोल्डन येलो। तो ऐसा सुंदर मुख कमल जो श्रृंगार किया हुआ है, राधा रानी कहते हैं वर्णन करो, तो बहुत वो समझ में नहीं आता नहीं उनको क्या बोले अभी, कौन सा शब्द प्रयोग करें, क्या कहें। तो आसमान में देखते हैं तो आसमान में चंद्रमा जो है पूर्ण चंद्रमा विकसित होकर दर्शन दे रहे हैं। झट से बोलते हैं, अरे आपका सौंदर्य चंद्रमा की तरह है। तो आमतौर पर अगर किसी स्त्री को बताया जाए कि आपका सौंदर्य चंद्रमा की तरह है तो वो कितनी खुश हो जाएगी। चांद की तुलना सौंदर्य से की जाती है, लेकिन जैसे ही वो चांद की तुलना की जाती है तुरंत राधा रानी को गुस्सा आता है। वो कहती है हम आपसे बात नहीं करेंगे। बोले क्या बात हुई, इतनी चंद्रमा सुंदर आकाश में दर्शन दे रहे हैं। तो वो कारण बताती है कि चंद्रमा सुंदर है लेकिन चंद्रमा पर दाग होते हैं, हमारा सौंदर्य पे कोई दाग नहीं होता है, हमारा सौंदर्य दाग ही नहीं। चंद्रमा सुंदर है लेकिन चंद्रमा को ग्रहण लगता है, हमारे सौंदर्य को कभी ग्रहण लगता नहीं। चंद्रमा को ग्रहण लगता है और चंद्रमा अमावस्या सॉरी पूर्णिमा के बाद में घट जाती है, उसमें क्षति होती है। क्या कहते हैं उसको, क्षय कहते हैं, क्षय। पूर्णिमा में पूरे होते हैं, बाद में कम 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 होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। हमारे सौंदर्य में कभी क्षति नहीं होती है, हमारा सौंदर्य हमेशा दिन ब दिन क्षण ब क्षण बढ़ते जाता है। और चंद्रमा जो है वो पर प्रकाशित है, सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ता है, इट्स लाइक डिपेंडिंग ऑन द लाइट ऑफ द सन टू गिव इट्स ओन लाइट। तो प्रकाशित तो है वो, लेकिन पर प्रकाशित है, हम स्वयं प्रकाशित है, हमारा तेज जो है हमारे खुद का है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसे कई कारण बताए उन्होंने, और जब ये समझाया तो कृष्ण को हम समझ गए कि गड़बड़ हो गया, हमने चाहा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। और वो रूठ कर चले जाती है, इस पहाड़ की ओर जाती है। तो कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं और ललिता सखी आती है, विशाखा सखी आती, सब सखी आती है, और राधा रानी रूठ गई, चली गई, श्रृंगार किया फिर भी रूठ गई। तो कृष्ण कहते जाओ उसको बनाओ, मैं उनके बिना रह सकता नहीं, उनका अप्रसन्न होना मेरे लिए मृत्यु की तरह है, मैं एक क्षण भी उनकी अप्रसन्नता सहन नहीं कर सकता, जाओ उसको बनाओ। और रोने लगते हैं, कृष्ण की व्याकुलता देखकर ललिता भागती है राधा रानी की ओर, बताती है। राधा रानी को एक इच्छा ही नहीं उनकी ओर देखने की, कृष्ण को ले जाती है वहां पर, उनका दाया हाथ इनका बाया हाथ मिलाना चाहती है तो झुटकार देती है उसको। कृष्ण को यहां से लेके जाती है तो उधर देखती है, उधर ले जाती है ललिता तो इधर देखती है, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो फिर क्या करें, कृष्ण भगवान रोने लगते हैं। तो कृष्ण भगवान उनको मनाने लगते हैं, और मनाने के बाद मानती नहीं है तो उनके चरणों में अपना सर रखते हैं, मुकुट उतार देते हैं और अपना शीश उनके चरणों में रखते हैं, फिर भी नहीं मानती है। फिर वो रोते हैं और अपने अश्रुओं से उनको चरण धोते हैं, उनके चरणों के नीचे रज में लोटपोट हो जाते हैं, लोटांगण, फिर भी नहीं मानती। ललिता जाती है दोबारा, तीन बार जाती है, दो बार जाती है, तो और ऊपर और ऊपर और ऊपर चढ़ती है। और आखिर में ललिता कहती है मैं थक गई अभी, उनके पास जाती हूँ तो और ऊपर चढ़ जाती है, आपके यहाँ आती हूँ तो आप मुझे दोबारा भेजते हो, आप भी नहीं मान रहे हो, आप भी नहीं छोड़ रहे हो, वो भी नहीं छोड़ रही है, और ऊपर जाके चोटी में बैठ जाती है। वो कहते आवत जावत हार गई रही, मैं तो थक गई अभी, मैं क्या करूं, ना तुम्हारा व्याकुलता कम हो रही है ना उसका मान समाप्त हो रहा है, मैं तो बीच में फंस गई। अचानक ललिता आती है और कृष्ण भगवान के कान में कुछ बोलती है, और कृष्ण भी व्याकुल है, झट से निकल जाते हैं वहां से, और ललिता भी निकल जाती है, और राधा रानी वैसे ही मान करके बैठी हुई है। कुछ देर जाती है, बीच में समय बीतता है, तो सामने वाली पहाड़ी, जैसे कि पहाड़ी है ना मान मंदिर की, इसके सामने एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पहाड़ी पे एक मोर आता है और वो नाच करने लगता है, सुंदर नृत्य करता है, बहुत बहुत सुंदर नृत्य करता है। तो सब सखियाँ आती है और राधा रानी को बोलते, राधा रानी देखो देखो कितना सुंदर मोर नाच कर रहा है, ऐसा मोर कभी हमने देखा नहीं, तो देखने को तैयार नहीं है, मान में बैठी हुई। तो मोर नृत्य करता है और अच्छा नृत्य करता है, और एक समय पे इतना सुंदर नृत्य करता है, तो सखियाँ बोलते हैं अभी देख तो लो कम से कम, इतना सुंदर नृत्य कर रहा है। तो बड़ी ही नाखुशी से वो मुड़ के देखती है, और जैसे ही उस मोर को देखती है बड़ा आनंद आता है उसको, तुरंत मुड़ जाती है उसके ओर देखने लगती है, वो उसको देखकर मोर को और उत्साह आता है और वो बड़े प्रेम से नाच करने लगता है। इतना सुंदर नृत्य करता है तो उसको देखकर बहुत सारे मोर और बहुत सारी मोरनियाँ इकट्ठा हो जाती है और बड़े प्रेम से उत्साह से नृत्य करती है। फिर राधारानी बड़े चाव से देखने लगती है तो और उनको उत्साह आता है और सब लोग झूम झूम के नाच करने लगते हैं। सब गोपियाँ अपने कंगन और पायल का झनकार से म्यूजिक बनाते हैं और मोर नृत्य करते हैं। ऊपर से आकाश में बादल छा जाते हैं और मंद मंद बूंद वर्षाव करते हैं प्रेम की, एकदम सुंदर, घनघोर नहीं, बहुत सुंदर छिड़काव, सुगंधी द्रव्य, सुगंधी बारिश। और एक समय आता है कि वो सारे मोर, वो प्रधान मोर, उसके सारे मोर और मोरनिया इतना सुंदर नाच करती है कि राधा रानी को इतनी प्रेरणा होती है, वो सीधा उतर के वहाँ चले जाती है और खुद मोरनी बनकर नाच करने लगती है। और दोनों मिलकर मोर मोरनी उत्साह से इतना सुंदर नृत्य करते हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं कि मशगूल हो जाते हैं पूरे। फिर एक समय पर नृत्य में वो आलिंगन देते हैं, तब राधा को समझ में आता है कि ये मोर कृष्ण है, ये श्याम सुंदर है, ऐसे उनको पता चलता है। तब तक तो उनका मान खत्म हो जाता है। तो ये मोर कुटी है ऊपर, ये मोर कुटी से ग्वाल बाल लड्डू फेंकते हैं जब गोपियां हम पर स्नान करती हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, ऊपर से लड्डू फेंक के डिस्टर्ब करते हैं। हमारे बॉम्बे में लोग अंडे फेंकते हैं, टमाटर फेंकते हैं, ब्रज में लड्डू फेंकते हैं, प्रेम के लड्डू फेंकते हैं। एनीवेज, तो मोर कुटी पे मोर लीला हुई है, वहाँ पर मोर नाचे हैं। और केवल एक लीला नहीं है, यहाँ पर अनंत मोर लीला है, हर समय हर क्षण यहाँ पर मोर नाचते रहते हैं। ये तो मान लीला हुई। एक बार तो राधा रानी आई, कृष्ण भगवान भी आए, मैंने बताया आपको ये कथा, सुंदर हवा बह रही थी, उनके पल्लू आकाश में उड़ रहे थे, तो वो देखकर सब मोर प्रभावित हो गए और मोर वहाँ इकट्ठा हुए, मोरनियाँ इकट्ठा हुई और नाचने लगी। तो राधा और कृष्ण जो है वो देखने लगे, सब गोपियों ने झनकार बनाई अपने कंगनों की और मोर का नृत्य देखा दोनों ने। फिर एक समय दोनों मोर और मोरनी का भेष बना के आए और सब सखियों के बीच में नाचने लगे और सब सखियों ने उनका नृत्य देखा। एक समय स्वयं मोर और स्वयं मोरनी बनकर आए, भेष नहीं बनाया, परिवेश नहीं पहना, स्वयं मोर और मोरनी के रूप में आए, सारी सखियाँ भी मोरनी मोर बने और नृत्य किया उन्होंने यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर मोरों की नृत्य लीला है और सब लोग मोर और भगवान स्वयं राधा रानी स्वयं एक दूसरे को रिझाते हैं नृत्य करते हुए मोर के भाव में। तो ये मोर कुटी जो है यहाँ पर कुछ समय पहले, मतलब कृष्ण के समय की नहीं, अभी अभी की बात है, लेकिन शायद 100 साल पहले हो गई, एक अंधे बाबा रहते थे यहाँ पर मोर कुटी पे। और वो ऐसे सिद्ध बाबा थे कि उनका एक शिष्य था जो शेर था, शेर, और वो शेर के गले में वो झोली बांधते थे और वो शेर जाकर गुरुजी के लिए मानपुर में जाकर भिक्षा करता था, माधुकरी। लोग भी देखते थे शेर आया है, डरते नहीं थे उससे क्योंकि वो गुरुजी का शिष्य है, वैसा वाला शेर नहीं है, वो भक्त शिष्य है, भक्त शेर है। तो उसकी झोली में रोटियां डालते थे वो, और ये दो चार घर भिक्षा करके रोटियां इकट्ठा करके ऊपर मान ऊपर चढ़ता था मोरकुटी पे, तो गुरुजी उसका भोग लगाकर खाते थे और बची हुई रोटियां शेर खाता था, ऐसे महात्मा थे वो। तो एक दिन रात को इस अंधे बाबा को स्वप्न आया और उस स्वप्न में अंधे बाबा ने दर्शन दिया, राधा रानी ने दर्शन दिया उनको, और स्वप्न में राधा और कृष्ण दोनों मोर बनकर नाचे और उनको दर्शन दिया मोर लीला का अंधे बाबा को। और उसके बाद में आदेश दिया कि अभी तुमने जो देखा है उसका आपको चित्रपट निकालना है अपने हाथ से। तो बाबा बोलता है मैं तो अंधा हूँ, मुझे कैसे दिखेगा, बोले मैं आपको दिखाऊंगी, आप चिंता मत करना, मेरी कृपा से आप कर सकते हो। तो वो अंधे बाबा ने राधा रानी की कृपा से अंधे होते हुए भी वो चित्रपट निकाला जिसमें कृष्ण राधा दोनों मोरनी मोर मोरनी बने हुए हैं, एक तरफ से कृष्ण ऐसे झुके हुए हैं, एक तरफ से राधा रानी ऐसे झुकी हुई, और ऐसा गोल बनाया उन्होंने एक दूसरे के साथ में पोज देकर, वो चित्रपट उन्होंने बनाया। वो ब्रज का बड़ा मशहूर चित्रपट है, आपको जगह जगह वो चित्रपट मिलेगा जहाँ भगवान मोर और मोरनी बने हुए हैं, राधा और कृष्ण। और वो चित्रपट आज मोर कुटी में भगवान के जगह पर है, मतलब अल्टर पे है, वेदी पर है, और उसी चित्रपट की पूजा की जाती है सुबह शाम और दर्शन करते सब लोग। ऐसी अद्भुत भूमि है ये। हाँ, यहाँ पर सब कुछ अद्भुत है, हर चीज अद्भुत है, भगवान की लीला अद्भुत है। केवल भाव चाहिए हृदय में। जब हृदय में भाव होगा तो हमको लीलाओं में रस आएगा, आनंद आएगा। जब हम सुनेंगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, उसमें भक्ति जागृत होगी, प्रेम जागृत होगा और श्री कृष्ण भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से मान मंदिर अनंत लीलाओं का स्थली है और अनंत अनुभूतियों का उगम स्थान है। और जिस ब्रज की जगह में या पवित्र जगह में संत लोग आते हैं और संत लोग भजन करते हैं, अपना तपस्या करते हैं, पूजन करते हैं, अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं। ब्रज भूमि जो है ना, एक व्यक्ति है, मैंने जैसे कहा ना, स्वयं बलराम जी जो है वो ब्रज भूमि के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। ये ब्रज भूमि कोई मतलब पृथ्वी तो है ही, लेकिन बलराम जी का ये विस्तार है ब्रज भूमि। पृथ्वी के ऊपर बलराम जी ने अपने आप को बिछाया है, भगवान का धाम भी बनते हैं वो, भगवान का जो शयन गृह है वो भी बनते हैं, भगवान का सिंहासन बनते हैं, भगवान की मुरली बनते हैं, भगवान का पीताम्बर बनते हैं, हर वस्तु भगवान धारण करते हैं, वो सब बलराम जी हैं स्वयं, वो स्वयं भगवान के अलंकार बन जाते हैं। तो ये दिव्य भूमि है, पृथ्वी माता तो है ही, लेकिन बलराम जी का ये साक्षात विस्तार है। वही बलराम जी भगवान के छोटी बहन जाते हैं और राधा रानी की छोटी बहन बन जाते हैं, अनंग मंजरी के रूप में अवतार लेते हैं, राधा रानी के घर पे रहते हैं। श्रीदामा, राधा रानी, अनंग मंजरी, ऐसा परिवार है उनका। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये भूमि बहुत अद्भुत भूमि है। अभी आप लोग सब जाएंगे मुंबई, अपने अपने जगह जाएंगे, तो इस भूमि की कृपा साथ में लेके जाना, इसकी याद साथ में लेके जाना, इन लीलाओं की स्मृति साथ में लेके जाना, क्योंकि जीवन की अलभ्य प्राप्ति है ये। यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे ऐरे गरा पहुँच नहीं सकता है। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा था कि क्योंकि धाम व्यक्ति है, धाम स्वयं सिद्ध चीज है, सचेतन चीज है, मतलब इट्स अ कॉन्शियस एंटिटी, इट्स अ कॉन्शियस पर्सनैलिटी। तो जब कोई साधु यहाँ पर आके भजन करता है तो धाम अपना पूरा गौरव जो है वो प्रकट करता है। और जब कोई चोर डाकू आकर यहाँ पर गलत काम करता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, शराब पीता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, चोरी करता है, लोगों को लूटता है, त्रस्त करता है, ऐसे गलत काम करने से वो धाम व्यक्ति जो है वो अपना गौरव उसे छुपा लेता है, अपना गौरव उसके लिए प्रकट नहीं करता है। लेकिन जिस जगह पर संत रहते हैं वहाँ धाम अपना पूरा गौरव प्रकट करता है। तो यहाँ में हमें यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर रमेश बाबा जैसे संत ने 65 साल से यहाँ पर भजन किया है। 1952 में यहाँ पर आए थे वो आज 65 साल पूरे हो जाते हैं इस साल में। बहुत डाकुओं का अड्डा था मान मंदिर। आप हमारी गुरुजी की किताब पढ़िए, आपको सब उसमें वर्णन मिलेगा कैसा था मान मंदिर उस समय। और उसमें रहकर उन्होंने भजन किया है, तपस्या किया है, रात को 1 बजे तक नृत्य करते थे, तूफान नृत्य करते थे, हमने भी दर्शन किया है उसका। आज वृद्धावस्था है उनकी, लेकिन जब हम 30 साल पहले आए थे तो काफ़ी 50 साल के आसपास उम्र थी। बहुत सुंदर गायक हैं, बहुत सुंदर गाना भजन गाते हैं और उनका गायन इतना हृदय को हिला देता है पूरा। तो उनके तपस्या से, उनके भजन से, उनके शुद्ध भक्ति से ये जगह जो है ये भी बहुत ज़्यादा गौरवशाली प्रकट लीला यहाँ पर है। तो हमारा भाग्य है संतों का संग मिलना, ये आसान बात नहीं है ज़िंदगी में। संत लोग का संग आसानी से प्राप्त नहीं होता है। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से, बड़ी तपस्या से भगवान को अगर विश्वास हो गया कि होना चाहिए तो फिर वो हमको संत का संग देते हैं। और संत का संग होने के बाद में उनका संग का लाभ लेना पूरा, ये भी बड़ी बात है। तो हम लोग संग संत के संग में है लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कुछ, हमारा ध्यान कहीं और है। तो संत का संग हो के भी कुछ लाभ नहीं है। संत का सत्संग स्वीकार करना ये जीवन की सबसे बड़ी अलभ्य प्राप्ति है। और भगवान की दया से हमें कई संतों का संग मिला है, तो इसको गंवाना नहीं चाहिए। मनुष्य धर्म बहुत दुर्लभ है और उस दुर्लभ मनुष्य जीवन में अति दुर्लभ एक चीज है, वो है संत का संग। और संत के संग में बाकी जो मूल्यवान वस्तुएं हैं सब मिल जाती है, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का विग्रह, भगवान का शास्त्र, भगवान का उपदेश, भगवान के मन में हमारे लिए क्या है उसका रहस्य, सारी चीजें जो हमारे लिए आवश्यक हैं, कीमत मूल्यवान है, वो संत के संग में प्राप्त हो जाती है। केवल संत के संग में हम बने रहेंगे तो सारी चीजें जो योगक्षेम सारा हमको प्राप्त हो जाएगा। भगवान के दरवाजे तक हमको संत लोग अपने संग से छोड़ सकते हैं, इतनी शक्ति है उनके अंदर। कृष्ण से तुम्हारा, कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, कृष्ण आपके हैं और कृष्ण आप हमें दे सकते हैं, यह आपकी शक्ति है। ऐसे वैष्णव पुकारते हैं भगवान को कि आप इतने महान हो, ओ साधु, ओ वैष्णव, ओ संत, ओ ऋषि, आपके पास कृष्ण है, कृष्ण आपके हैं, वो आपके हृदय में रहते हैं और कृष्ण के हृदय में आप रहते हो और उस कृष्ण को आप हमें दे सकते हो, ये आपकी शक्ति है। आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तो वो पाछे पाछे। हम सब लोग कंगाल हैं भक्ति में, भजन में, शुद्ध भाव में, हाँ पवित्रता में, सब जगह हम लोग कमजोर हैं। अमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तो वो पाछे पाछे। कृष्ण कृष्ण को पुकारते हुए आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और हमको विश्वास है कि आपके पीछे भागेंगे तो आप हमें कृष्ण जरूर देंगे। वो नीलमणि कृष्ण जो है वो हमको आप देंगे। ऐसे ही दयालु संत होते हैं, कहते हैं भगवान से भी अधिक दयालु संत होते हैं। भगवान एक बार दया नहीं करेंगे लेकिन संत दर दया करेंगे। और राधा रानी का स्वभाव अपने पास रखते हैं। राधा रानी कैसे, भगवान से भी अधिक दयालु है वो, अति दयालु, भोली भाली। तो उनके प्रतिनिधि हमारे संत हैं सब, उनका संदेश, उनका भाव, उनकी करुणा हम तक पहुंचाते हैं। तो हमको इसलिए संतों का संग जो है वो ऐसा लाइटली लेना नहीं चाहिए, उसको गंभीरता से जीवन में स्वीकार करना चाहिए। तब जाकर हमारा मनुष्य जीवन, पुरुष का हो, स्त्री का हो, बच्चे का हो या बुढ़े का हो, वो संपन्न हो जाता है और परिपूर्ण हो जाता है। आपकी यात्रा तब सफल होगी जब आप इस यात्रा में पाए हुए अमूल्य धन को, यानी वैष्णव की सेवा को अपने जीवन में अपनाएंगे, उतारेंगे उसको, उस भाव को लेकर जीवन चलाएंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, गलत आदतें छोड़ देंगे, भगवान के नाम का भजन करेंगे, तो ही आपकी यात्रा सफल है। नहीं तो आप पिकनिक करके चले गए, आउट साइड सीइंग करके चले गए, लेकिन यहाँ पर वो धन प्राप्त है वो किसी देवता को प्राप्त नहीं होता है। देवता लालायित रहते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होता है। ऐसा प्रेम और भक्ति का धन यहाँ पर संतों के माध्यम से हम सबको प्राप्त होता है। वही प्राप्त करना जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। बाकी कोई प्राप्ति जीवन की होती है वो किसी भी दुख को नहीं मिटा सकती है, लेकिन प्रेम और भक्ति जो यहाँ मिलती है वो सब दुखों को मिटा देती है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जो लोग दीन भाव से आते हैं राधा रानी उनको अपना लेती है, जो लोग गर्व से आते हैं वो यहाँ टिक नहीं पाते हैं, नम्र बनकर आते हैं, सारी टोपियाँ उतार के आते हैं, अपने आप को दीन बनाकर आते हैं, उस दीन का आसरा राधा रानी है और दीनानाथ भगवान कृष्ण है। जब दीन बनकर आएंगे सब कुछ भूल कर, उनका बनकर आएंगे तो वो अपना लेंगे, उस गर्व से छाती फुला कर आएंगे तो हम लोग को यहाँ पर आसरा नहीं मिलेगा। हम सब लोगों को यहाँ पर भिक्षुक बन के आना चाहिए। बड़ा सुनने में अजीब लगता है, अरे हम तो भिखारी थोड़ी, भिखारी हैं हम, भिखारी नहीं हैं, लेकिन हृदय से हमको वो भाव होना चाहिए कि हम यहाँ पर भिक्षुक बन के आए हैं, हमको भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा मांग रहे हैं? प्रेम और भक्ति और सेवा की भिक्षा मांग रहे हैं। तो हमारा आना सफल है। कुछ समझ के आएंगे कि मैं डॉक्टर हूँ या फलाना हूँ या मैनेजर हूँ, सुंदर हूँ, बड़े अच्छे कुल से हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कोई भी गर्व लेके आएंगे तो हमारा आना फेल है यहाँ पर। दीन बनकर आएंगे, नम्र बनकर आएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको। जो टोपियाँ पहने उसको उतारना पड़ेगा कि ये भी झूठ टोपी है, ये भी झूठ टोपी है, उसको सबको उतारना पड़ेगा। और जैसे भगवान ने भेजा था वैसे हम उस भाव से जाएंगे, हाँ भोला भाला बनकर, सरल हृदय बनकर जाएंगे तो जरूर हमको अपनाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।